कभी ना कभी हम सबके साथ ऐसा जरूर होता है। मान लीजिए किसी दोस्त के घर गए और वो मिले ही नहीं, दरवाजे पर ताला था।
हाँ, या फिर कोई बहुत जरूरी फोन कॉल आया हो और हम फोन के पास ही ना हो।
बिल्कुल, तो अब ऐसे में क्या करें, वो जरूरी बात उन तक पहुंचाएं कैसे?
यहीं पर, हाँ यहीं काम आती है वो छोटी सी पर्ची या आजकल फोन पर भी वो छोटा सा नोट जिसे हम कहते हैं मैसेज।
तो आज हम इसी चीज पर, यानी मैसेज राइटिंग की कला पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं,
जी
और इसके लिए हम आधार ले रहे हैं अध्याय 17, जिसका नाम भी बड़ा दिलचस्प है, रिंग रिंग इट्स मैसेज टाइम।
हाँ बिल्कुल मौजू नाम है।
ये अध्याय उन्हीं छोटे लेकिन कई बार बहुत महत्वपूर्ण मैसेजेस के बारे में है जो हम तब छोड़ते हैं जब भाई आमने सामने बात नहीं हो पाती।
सही का।
तो आज हमारी इस चर्चा का मकसद क्या है? यही कि इस अध्याय से मैसेज राइटिंग का जो सार है उसे समझे।
हाँ मतलब बिल्कुल बेसिक से।
हाँ, कि ये मैसेज होता क्या है, इसे लिखने का सही तरीका, मतलब फॉर्मेट क्या है, कौन सी जानकारी इसमें डालनी ही डालनी है, जैसे डेट टाइम और क्यों लिख रहे हैं वो पर्पस।
और किन चीजों से बचना है ये भी जरूरी है।
बिल्कुल, तो उम्मीद है कि इस चर्चा के बाद मैसेज राइटिंग का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो एकदम साफ हो जाएगा।
इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, इसमें क्या क्या शामिल करना है?
हाँ, इसका सही फॉर्मेट और वो कौन से छोटे छोटे नियम हैं जो एक अच्छे मैसेज को असरदार बनाते हैं।
ठीक है,
तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले सवाल से, ये मैसेज आखिर है क्या चीज?
देखिए अध्याय के हिसाब से ये मूल रूप से जानकारी देने के लिए लिखा गया एक छोटा मतलब संक्षिप्त नोट है,
खास तौर पर उन हालात के लिए जब आप उस व्यक्ति से जिसे जानकारी देनी है मिल नहीं सकते या फोन पर बात नहीं कर पा रहे हैं।
बिल्कुल सही। इसे आप एक तरह का इन्फॉर्मेशन ब्रिज समझ सकते हैं, सूचना का पुल।
अच्छा, इन्फॉर्मेशन ब्रिज। हाँ
हाँ, जो जानकारी को एक व्यक्ति से दूसरे तक पहुंचाता है, खासकर तब जब सीधा संपर्क मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट मुमकिन ना हो।
और ये बहुत काम की चीज है ना?
अरे बहुत ज्यादा, क्योंकि कई बार जानकारी इतनी जरूरी होती है कि इंतजार नहीं किया जा सकता। सोचिए अगर कोई प्लान बदल गया, कोई जरूरी अपॉइंटमेंट कैंसिल हो गया
और आप बता ना पाए।
हाँ तो कितनी गड़बड़ हो सकती है। ये मैसेज उस गड़बड़ को होने से रोकता है।
हाँ, और अध्याय में ऐसी कई आम सी स्थितियां दी भी गई हैं जहां मैसेज लिखने की जरूरत पड़ जाती है।
जैसे
जैसे किसी का फोन आया और आप थे नहीं घर पर, तो कोई और आपके लिए मैसेज लिख सकता है।
हाँ ये तो अक्सर होता है।
या कोई मेहमान आ गया अचानक, जब आप बाहर थे तो शायद उनके लिए दरवाजे पर एक मैसेज छोड़ना पड़े।
जी,
या फिर मान लीजिए दोस्तों के साथ कहीं जाने का प्लान बना और बिल्कुल आखिरी मिनट पर कुछ बदलना पड़ गया।
तो फटाफट एक मैसेज छोड़ना सबसे तेज तरीका हो सकता है बताने का।
सही, तो ये स्थितियां दिखाती हैं कि मैसेज राइटिंग कोई सिर्फ किताबी चीज नहीं है, ये तो रोजमर्रा की जरूरत है।
बिल्कुल, और ये हमें सिखाता भी है कि कम शब्दों में बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट अपनी बात साफ तौर पर कैसे कहें।
हाँ, ये तो आजकल वैसे भी बहुत जरूरी हुनर है।
बहुत जरूरी आज की तेज रफ्तार जिंदगी में।
चलिए अब आते हैं एक अच्छे मैसेज के स्ट्रक्चर पर, या जिसे फॉर्मेट कहते हैं, क्योंकि सिर्फ जानकारी लिख देना ही काफी नहीं होता।
नहीं बिल्कुल नहीं, उसे इस तरह से लिखना होता है कि पढ़ने वाले को एक नजर में फटाफट समझ आ जाए।
हाँ, तो अध्याय 1 बहुत साफ फॉर्मेट बताता है इसके मुख्य हिस्से क्या क्या हैं। सबसे ऊपर अध्याय कहता है लिखनी चाहिए डेट, यानी वो तारीख जिस दिन ये मैसेज लिखा जा रहा है।
हाँ, जैसे 16 जुलाई 2025।
और ये जरूरी क्यों है?
ताकि पता चले कि जानकारी कितनी ताजा है, कितनी रेलेवेंट है। डेट के बिना तो मैसेज का पूरा संदर्भ ही हो सकता है, हो सकता है वो बात कल की हो और आज लागू ही ना हो।
सही बात है, डेट के ठीक नीचे या कभी कभी साथ में भी आता है टाइम।
हाँ टाइम, यानी वो समय जब फोन कॉल आया या मेहमान आए या जब आप ये मैसेज लिख रहे हैं, जैसे 3:15 PM।
और ये भी डेट जितना ही जरूरी है ना?
हाँ बल्कि कई बार तो ज्यादा जरूरी हो जाता है। मान लीजिए एक ही दिन में कई प्लान बदले हों तो टाइम से ही पता चलेगा कि कौन सी जानकारी सबसे नई है।
हाँ, घटनाओं का क्रम समझने के लिए।
बिल्कुल, या जानकारी कितनी अर्जेंट है ये भी टाइम से पता चलता है।
ठीक है, इसके बाद आता है सैल्यूटेशन।
सैल्यूटेशन, हाँ,
यानी जिसके लिए मैसेज है उसे संबोधित करना, जैसे डियरिया या सिर्फ माँ या जो भी।
ये मैसेज को थोड़ा व्यक्तिगत मतलब पर्सनल टच देता है,
और ये साफ भी करता है कि संदेश किसके लिए है।
हाँ ये बहुत जरूरी है, खासकर अगर घर में या ऑफिस में कई लोगों, कौन पढ़ेगा इसे। सैल्यूटेशन ये बताता है, वरना कंफ्यूजन हो सकता है।
बिल्कुल, फिर आता है मैसेज का सबसे अहम हिस्सा, उसकी बॉडी। असली जानकारी होती है क्या बात है, किसने कहा क्या करना है वगैरह वगैरह, और इसे छोटा और सीधा रखना होता है ना?
हाँ बिल्कुल, कंसाइज और टू द पॉइंट। अध्याय का वो उदाहरण याद है?
हाँ, वो माँ वाला, तुम्हारी माँ ने फोन किया था, वह तुम्हें ऑडिटोरियम से शाम 5:30 बजे पिक करेंगी, 4 बजे की बजाय।
देखिए कितनी सीधी स्पष्ट बात, कोई लाग लपेट नहीं,
इसमें सारी जरूरी जानकारी है।
बॉडी लिखते समय बस यही ध्यान रखना है कि सारी की इन्फॉर्मेशन आ जाए, लेकिन कोई फालतू बात ना हो। हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, इन सवालों के जवाब मिल जाने चाहिए अगर लागू होते हैं तो।
ठीक है, और आखिर में सबसे नीचे क्या आता है?
राइटर्स नेम, यानी उस व्यक्ति का नाम जिसने ये मैसेज लिखा है।
जैसे अनन्या या रिया, जैसा उदाहरणों में था।
हाँ, इससे पढ़ने वाले को पता चलता है कि ये जानकारी किसने पहुंचाई है।
ये सोर्स की क्लैरिटी के लिए जरूरी है।
बिल्कुल, जवाबदेही के लिए, और अगर पढ़ने वाले को कुछ और पूछना हो तो उसे पता हो कि किससे बात करनी है।
तो ये पूरा फॉर्मेट, डेट, टाइम, सैल्यूटेशन, बॉडी और राइटर्स नेम, ये एक तरह से पक्का करता है कि मैसेज असरदार हो।
हाँ, ये ढांचा सुनिश्चित करता है कि जानकारी स्पष्ट हो, पूरी हो और सही समय पर पढ़ने वाले को समझ आ जाए।
फॉर्मेट तो समझ आ गया, लेकिन सिर्फ फॉर्मेट का पालन करना ही काफी नहीं है शायद।
नहीं, बिल्कुल नहीं।
अध्याय कुछ और जरूरी बातें भी बताता है जिन्हें वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कहता है। ये असल में मैसेज को और ज्यादा प्रभावी बनाने के नियम हैं।
जी हाँ, कुछ गाइडलाइंस हैं।
पहला नियम बड़ा दिलचस्प लगा मुझे, यूज इनडायरेक्ट स्पीच। इसका क्या मतलब हुआ?
इसका मतलब है कि जब आप किसी और की कही बात को मैसेज में लिख रहे हों तो उसे सीधे सीधे, मतलब कोटेशन मार्क्स में, कोट न करें।
अच्छा।
बल्कि उसे अपने शब्दों में रिपोर्ट करें। जैसे अगर फोन करने वाले ने कहा था मैं उसे 5 बजे लूंगा, तो आप मैसेज में लिखेंगे उन्होंने कहा कि वे तुम्हें 5 बजे लेंगे।
डायरेक्ट कोट, मैं उसे 5 बजे लूंगा, इस्तेमाल नहीं करना है।
नहीं, उससे बचना है।
पर ऐसा क्यों, डायरेक्ट स्पीच क्यों नहीं?
इसके कई कारण हैं। एक तो इनडायरेक्ट स्पीच अक्सर ज्यादा संक्षिप्त, मतलब शॉर्टर होती है।
अच्छा।
दूसरा, ये बातचीत के लहजे को थोड़ा न्यूट्रल रखती है। कभी कभी किसी की कही बात को हूबहू लिखने से उसका गलत मतलब निकल सकता है या टोन गलत लग सकती है।
हाँ, ये हो सकता है।
इनडायरेक्ट स्पीच में फोकस जानकारी पे रहता है, शब्दों पर नहीं, और ये ज्यादा फॉर्मल भी लगता है मैसेज राइटिंग के कॉन्टेक्स्ट में।
समझ गए। दूसरा नियम है कीप योर टोन पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुल, मतलब भाषा विनम्र और सम्मानजनक हो।
जी हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है।
भले ही आप जल्दी में हो या शायद थोड़ी झुंझलाहट भी हो, मैसेज में वो झलकना नहीं चाहिए।
बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप सीधे बात नहीं कर रहे हैं तो आपके लिखे हुए शब्दों का वजन और बढ़ जाता है। रूखे या अधूरे वाक्य आसानी से गलतफहमी पैदा कर सकते हैं
या रिश्ते भी खराब कर सकते हैं।
हाँ, विनम्रता हमेशा एक अच्छा प्रभाव छोड़ती है, चाहे संदेश कितना भी छोटा क्यों ना हो।
तीसरा नियम है यूज शॉर्ट क्लियर सेंटेंसेस, वाक्य छोटे और स्पष्ट हो, लंबे उलझे हुए वाक्यों से बचना है।
एकदम सही, मैसेज का मकसद ही है फटाफट जानकारी देना। पढ़ने वाले के पास शायद लंबा चौड़ा पैराग्राफ पढ़ने का वक्त या धीरज ना हो।
हाँ, बस काम की बात पता चल जाए।
छोटे सीधे वाक्य तुरंत समझ आते हैं और किसी तरह के भ्रम की गुंजाइश भी कम रहती है।
और चौथा अहम नुक्ता, डोंट फॉरगेट टू मेंशन हु लेफ्ट द मैसेज। अगर आप किसी और का संदेश आगे बढ़ा रहे हैं तो ये जरूर बताएं कि मूल संदेश किसका था।
हाँ, जैसे तुम्हारे पिता ने फोन किया था या मैनेजर ने ये जानकारी दी है, इस तरह। हाँ, ये सोर्स को स्पष्ट करता है। इससे पढ़ने वाले को पता चलता है कि ये बात आई कहाँ से है और वो कितनी भरोसेमंद है।
और अगर कुछ और पूछना हो तो किससे पूछे?
बिल्कुल, तो ये चारों नियम, इनडायरेक्ट स्पीच, विनम्रता, छोटे वाक्य और सोर्स का जिक्र, फॉर्मेट के साथ मिलकर एक वाकई असरदार मैसेज बनाते हैं।
चलिए इन नियमों और फॉर्मेट को असल में काम करते हुए देखते हैं। अध्याय में कुछ सैंपल मैसेजेस दिए हैं, उनसे बात और साफ हो जाएगी।
हाँ, उदाहरणों से समझना आसान होता है।
पहला नमूना एक फोन कॉल सिचुएशन पर है। स्थिति ये है कि आपकी दोस्त, मान लीजिए नित्या, वो क्लास में है और उसके पिता का फोन आता है जिसे आप, अनुषा, उठाती हैं। तो आप नित्या के लिए ये मैसेज छोड़ती है।
ठीक है।
डेट 16 जुलाई 2025,
11:30 AM, डियर नित्या, योर फादर कॉल्ड व्हाइल यू वर इन क्लास। He said he'll be picking you up from school today at 1:30 PM instead of your usual time. He asked you to wait at the main gate. Your father called while you were in class. He said he'll be picking you up from school today at 1. अब देखिए, इसमें सब कुछ है, डेट और टाइम सबसे ऊपर।
हाँ।
फिर सैल्यूटेशन, डियर नित्या, बॉडी में सारी जरूरी बातें हैं, किसने फोन किया, पिता ने, क्यों किया, पिकअप टाइम बदला है।
नया टाइम क्या है?
नया टाइम 1:30 PM है और नित्या को क्या करना है, मेन गेट पर इंतजार करना है।
सारी जरूरी जानकारी आ गई।
हाँ, और इनडायरेक्ट स्पीच का इस्तेमाल हुआ है। ही सेड ही विल बी पिकिंग यू अप, ही आस्क्ड यू टू वेट। डायरेक्ट कोट्स नहीं है।
वाक्य भी छोटे और स्पष्ट है
और अंत में राइटर्स नेम अनुषा भी है कि कहाँ इंतजार करना है।
तो कितनी परेशानी हो सकती थी, वो शायद अपनी पुरानी जगह पर इंतजार करती रहती।
सही बात है। अब दूसरा नमूना देखते हैं जो घर पर आए मेहमान के बारे में है।
ठीक है।
स्थिति ये है कि माँ घर पर नहीं है और चाची आती हैं।
अंत शालिनी।
उनके जाने के बाद माँ के लिए मैसेज लिखा गया है, बेटी रिया ने लिखा है। डेट 20 जुलाई 2025।
अच्छा, इसमें भी वही बात, डेट, टाइम, सैल्यूटेशन, डियर मदर,
जी
सब अपनी जगह पर।
जी,
बॉडी में क्या है, कौन आया था? आंट शालिनी।
क्यों आई थी?
ऋषि की बर्थडे पार्टी का न्योता देने। पार्टी कब है? 22 जुलाई शाम 6 बजे। कहाँ है? उनके घर पर।
सारी जानकारी है, हु, व्हाई, व्हेन, वेयर।
हाँ, और एक छोटी सी अतिरिक्त जानकारी भी है कि वो मिठाई लाई थी।
हाँ, ये एक अच्छा, मतलब वार्म टच है।
और अंत में लिखने वाले का नाम लव के साथ।
ये उदाहरण दिखाता है कि मैसेज सिर्फ बिल्कुल सूखी जानकारी देने के लिए ही नहीं, बल्कि थोड़ी सी गर्मजोशी या अतिरिक्त जानकारी, जैसे वो मिठाई वाली बात, देने के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है।
लेकिन कोर प्रिंसिपल्स वही है।
हाँ, मूल सिद्धांत वही है। मुख्य जानकारी स्पष्ट और संक्षिप्त रूप से दी गई है, फॉर्मेट का पालन हुआ है, भाषा विनम्र है।
तो ये दोनों उदाहरण इस बात को पुख्ता करते हैं कि अगर आप फॉर्मेट और नियमों को ध्यान में रखें
तो आप कम शब्दों में भी अपनी बात बहुत प्रभावी ढंग से कह सकते हैं।
अध्याय में एक और बहुत काम की चीज दी गई है, एक टेबल है, लेट्स ब्रेक इट डाउन, व्हाट टू इंक्लूड नाम से।
हाँ, वो चेकलिस्ट जैसी है।
बिल्कुल, ये असल में एक चेकलिस्ट ही है जो बताती है कि मैसेज लिखते समय किन सवालों के जवाब उसमें जरूर शामिल करने की कोशिश करनी चाहिए।
कौन कौन से सवाल हैं वो?
पहला, हु कॉल्ड और विजिटेड, यानी कौन था वो जिसने संपर्क किया। आपकी आंट थी, दोस्त के पिता थे या कोई और, इसका जिक्र जरूरी है।
हाँ, सोर्स पता होना चाहिए।
दूसरा, व्हेन, कब संपर्क किया, इसमें डेट और टाइम दोनों आ जाते हैं।
जी।
तीसरा, व्हाई, संपर्क करने का कारण क्या था, कोई निमंत्रण था, किसी प्लान के बदलाव की सूचना थी, कुछ याद दिलाना था, मतलब पर्पस क्या था। और चौथा, व्हाट टू डू नेक्स्ट, संदेश पाने वाले को अब क्या करना है, कहीं पहुंचना है, वापस फोन करना है, इंतजार करना है या किसी कार्यक्रम में जाना है, कोई एक्शन रिक्वायर्ड है या नहीं।
ये चार सवाल, हु, व्हेन, व्हाई, व्हाट नेक्स्ट, ये मैसेज लिखने से पहले सोचने के लिए एक बेहतरीन फ्रेमवर्क है।
हाँ, एक मेंटल चेकलिस्ट।
बिल्कुल, अगर आप सुनिश्चित कर लें कि आपके मैसेज में इन चारों सवालों के जवाब हैं जितने लागू होते हैं, तो ज्यादातर मामलों में आपका मैसेज पूरा और प्रभावी होगा। ये एक तरह से सेल्फ चेक का तरीका है कि कहीं कोई जरूरी बात छूट तो नहीं गई।
बहुत बढ़िया तरीका है ये सोचने का। और फिर अंत में अध्याय एक, असेसमेंट एंड रिव्यू, टेबल में इन सभी मुख्य बातों को फिर से संक्षेप में दोहराता है।
हाँ, एक क्विक रिकैप
से भी देख लेते हैं ताकि सब कुछ दिमाग में अच्छी तरह बैठ जाए।
ठीक है।
टेबल में फीचर यानी पहलू और रूल यानी नियम दिए हैं।
फॉर्मेट, रूल, डेट, टाइम, सैल्यूटेशन, बॉडी, नेम शामिल करें।
ठीक।
दूसरा फीचर, टोन, रूल, पोलाइट एंड शॉर्ट,
विनम्र और संक्षिप्त रहें।
तीसरा फीचर, लैंग्वेज, रूल, इनडायरेक्ट स्पीच का प्रयोग करें, कोट्स न लगाएं।
हाँ, ये जरूरी है।
और चौथा फीचर, पर्पस, रूल, टू पास अलोंग की इन्फो ब्रीफली, मतलब मुख्य जानकारी को संक्षेप में देना ही इसका उद्देश्य है।
बिल्कुल, ये टेबल एक तरह से पूरे अध्याय का निचोड़ है, कोई रेफरेंस के लिए बहुत अच्छा है।
तो कुल मिलाकर आज हमने मैसेज राइटिंग की बारीकियों को काफी अच्छे से समझा।
जी हाँ।
ये जाना कि ये सिर्फ एक नोट लिख देना नहीं है, बल्कि सही समय पर सही जानकारी पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण जरिया है,
एक जरूरी कम्युनिकेशन टूल है।
हाँ, हमने इसका पूरा फॉर्मेट देखा, डेट, टाइम, सैल्यूटेशन, बॉडी, राइटर्स नेम और उन नियमों को समझा जो इसे असरदार बनाते हैं,
जैसे इनडायरेक्ट स्पीच का इस्तेमाल, विनम्र भाषा, छोटे वाक्य और संदेश भेजने वाले का जिक्र करना।
और ये याद रखना जरूरी है, जैसा आपने पहले भी कहा था, कि ये हुनर सिर्फ स्कूल की परीक्षाओं के लिए नहीं है।
अरे बिल्कुल नहीं, ये तो असल जिंदगी का कौशल है, प्रैक्टिकल लाइफ स्किल।
हाँ,
आप घर पर हों, स्कूल में, कॉलेज में या अपने काम पर, ऐसी स्थितियां आएंगी ही आएंगी जब आपको मैसेज लिखने या पढ़ने की जरूरत पड़ेगी।
रोज ही पड़ती है लगभग।
हाँ, और अच्छी तरह से लिखा गया मैसेज गलत फहमियों से बचाता है, समय बचाता है और ये पक्का करता है कि ज़रूरी काम हो जाए। ये छोटे छोटे संदेश हमारे रोज़मर्रा के कम्युनिकेशन का एक बहुत अहम हिस्सा हैं।
बिल्कुल, ये छोटी सी लगने वाली चीज़ कम्युनिकेशन को कितना आसान और स्मूथ बना सकती है।
सही बात।
अच्छा, तो आप जाते जाते अपने श्रोताओं के लिए एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं।
हाँ, ज़रूर।
कल्पना कीजिए कि आपको किसी के लिए एक बेहद ज़रूरी मैसेज छोड़ना है, लेकिन शर्त यह है कि आप सिर्फ, मान लीजिए, 3 वाक्यों का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ 3।
ये तो चुनौती है।
हाँ, तो आप कौन सी सबसे ज़रूरी जानकारी चुनेंगे ताकि मैसेज का मतलब भी पहुँच जाए और वो अधूरा भी ना लगे? किन 3 वाक्यों में आप सबसे ज़रूरी बात कहेंगे?
दिलचस्प सवाल है, इस पे सोचना चाहिए।
इस पर विचार कीजिएगा। आज के इस विश्लेषण में इतना ही। उम्मीद है मैसेज राइटिंग पर यह बातचीत जानकारी भरी और उपयोगी रही होगी।
मुझे भी यही उम्मीद है।